శాంతి. ఓం శాంతి. ఎస్ పురుషోత్తమ సంఘం యుగ్బర్ బేహద్ కే బావనే కోటో మే కోయి కోయి మే భీ కోయి ఐసి హమ్ థోడే సే బ్రహ్మణో కో చున్ కర్కే అప్నా బనాయా. బావా నే హమ్ బచ్చో కో అప్నా బనా కర్కే హమారా భాగ్య ఉదయ కియా. భాగ్య విదాతా నే భాగ్య కో ఊంచా బనానే కే లియే శ్రేష్ఠ కర్మో కీ కలం భీ హరేక్ బ్రహ్మణో కే హాథ్ మే దే దియా. ఉస్కే సాథ్ సాథ్ బావా కహతే మే తుమ్ బచ్చో కో ఆప్ సమాన్ బనాతా హూం. హమారా తో భాగ్య ఉదయ కియా హీ, పరంతు బావా నే హమ్ బచ్చో కో మాస్టర్ భాగ్య విదాతా బనా దియా. ఖుద్ కే భాగ్య కో జితనా చాహియే ఉతనా ఊంచా బనావో. అనేక ఆత్మాఓ కే భాగ్య కో భీ శ్రేష్ఠ బనానే కే లియే ఉన్కో భీ కర్మ గతి కో సమ్జా కర్కే ఉన్కో భీ ఐసీ శక్తి దో. బావా కే ద్వారా జో యుక్తియా మిలీ హై భాగ్య బనానే కీ, వో యుక్తియా ఉన్హే యాద్ దిలావో ఔర్ ఉన్కే భాగ్య కా భీ ఉదయ కరో. ఆజ్ హమ్ లోగ్ ఇస్ బాత్ కా విచార్ కర్తే హై. సబ్సే పహలీ బాత్ లేతే హై కి చెహరా హమారా కైసా హోనా చాహియే. క్యోంకి ఆజకల్ హమ్ లోగ్ దేఖతే హై కి బాప్ దాదా హమ్ బచ్చో కో యే బతాతే హై కి బచ్చే జ్ఞాన్ కే ద్వారా తుమ్ బాప్ కో ప్రత్యక్ష కర్తే హై. యోగ కే ద్వారా వైబ్రేషన్ భీ ఫైలాతే హై శాంతి కే, పరంతు ఉస్కే సాథ్ సాథ్ తుమ్ బచ్చో కో దేఖనే కే బాద్ కిసీ భీ వ్యక్తి కో యే అనుభవ హోనా చాహియే కి హై ఇన్కో కౌన్ మిలా హై ఔర్ క్యా మిలా. క్యోంకి సబ్సే బడీ జో సేవా హై బాప్ కో ప్రత్యక్ష కర్నే కా జో తరీకా హై వో హై హమారా చెహరా ఔర్ హమారీ చలన్. కర్మో కీ సేవా యే బహుత్ బడీ సేవా హై. तो जिस प्रकार कोई रायल बाप के बच्चे होते हैं लौकिक में भी, उनके चेहरे पर से वो रॉयल्टी दिखाई पड़ती है. और हम ब्राह्मण तो रायल से रायल क्या, परंतु सर्वशक्तिवान बाबा के बच्चे होने के कारण हमारे चेहरे पर से वो रॉयल्टी, वो पर्सनैलिटी दिखाई पड़े. प्रसन्नता ये ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है, क्योंकि प्रसन्नता ये ऐसी चीज है जिस प्रसन्नता को देखने के बाद आज की दुनिया में जिस चीज की कमी है, आज मनुष्य भले अनेक अनेक उपाय करते हैं परंतु प्रसन्न नहीं रह सकते, खुश नहीं रह सकते. बाबा हम बच्चों को रोज अमृत वेले से लेके खुशी की ऐसी खुराक खिलाते हैं जिस खुराक के द्वारा हम ब्राह्मणों के चेहरे जो है वो खुशी से चमकते हैं. आपको और हमें ऐसा मालूम इतना नहीं पड़ता है, परंतु नए जब कोई भी देखते हैं तो हमेशा ये वर्णन करते हैं कि आपके पास, आप लोग जो है, आपके पास आने वाले जो भाई बहन हैं, सबके चेहरे चमकते रहते। तो ये जो चमक है, ये कौन सी चमक है जो आज की अंधेरी रात में भी लोगों को दिखाई पड़ती है? प्यूरिटी की चमक तो है ही, परंतu उसके साथ साथ ईश्वरीय प्राप्ति की जो चमक है, वो चमक, वो खुशी अपने चेहरे पर आती। प्रसन्नता जो है, अर्थात खुशी, प्रसन्नता की जननी है संतुष्टता। संतुष्टता ये सर्व गुणों की खान है और प्रसन्नता उसकी पहचान। अगर चेहरे के ऊपर प्रसन्नता है तो ये जरूर हम जान सकते हैं कि वो आत्मा संतुष्ट है, इसीलिए उसके पास प्रसन्नता है। संतुष्टता के बगैर प्रसन्नता कायम नहीं रह सकती है, और संतुष्टता का आधार है संपन्नता। आप देवताओं के चेहरे देखेंगे, सदैव प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है देवताओं के चेहरे? उनकी आठ जड़ मूर्तियों का दर्शन करने के बाद, दर्शन से भगत भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो आत्माएं संपन्न है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में, जिसके कारण उनके चेहरे पर वो विपुलता, वो संपन्नता, वो प्रसन्नता दिखाई पड़ती। अभी हम खुद को जाने, जबकि ब्राह्मणों को देवताओं से भी ऊंच माना जाता, और प्रैक्टिकल में हम ब्राह्मण देवताओं से ऊंच है, क्योंकि देवता ये दैवी संतान है और ब्राह्मण ये ईश्वरीय संतान। तो ईश्वरीय जीवन का जो नशा है, अगर वो सदैव हमारे पास है तो उससे हम सदैव प्रसन्न, सदैव खुश रह सकते हैं। जितनी जितनी हमारी परिपक्व अवस्था होती जाती है, उसके आधार पर इच्छा मात्रम अविद्या बनते जाते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देवताओं के खजाने की बात छोड़ो, परंतु बाबा ने तुम बच्चों को इतना भरपूर कर दिया है, जो ब्राह्मणों के खजाने में भी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। अर्थात ब्राह्मणों को कोई इच्छा नहीं है। अगर इच्छा है तो अप्राप्ति है, अगर ईर्ष्या है तो अप्राप्ति है, परंतु अगर कोई इच्छा ही नहीं है तो अप्राप्ति का ही। तो बाबा ने जो हम बच्चों को संतुष्टता का गुण दिया हुआ है, जिस संतुष्टता के आधार पर हम सदैव खुश, सदैव प्रसन्न रह सकते हैं, हमारी प्रसन्नता प्रशंसा के आधार पर नहीं होनी चाहिए। कोई कोई ऐसे पुरुषार्थी हैं, अगर उनकी प्रशंसा की जावे, अर्थात महिमा की जावे, तो खुश हो जाते हैं। अगर निंदा हो जावे तो प्रसन्नता गायब हो जाती। तो प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता जो है वो टेम्पररी है, क्योंकि सब दिन होता नहीं एक समान। और आप ये हमेशा ध्यान में रखिए, अगर आज हम लोग प्रशंसा को, महिमा को स्वीकार करते हैं, तो कल हमको निंदा भी स्वीकार करनी पड़ेगी। इसीलिए योगी का लक्षण ही ये बताया जाता है निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय हार जीत इसमें समान स्थिति। जब वो योगी जीवन हमारी बन जाती है तो कोई निंदा करे नहीं तो महिमा करे उससे कोई फर्क नहीं होता। अगर हम महिमा के आधार पर अपनी खुशी को रखते हैं प्रसन्नता को रखते हैं तो जरूर क्या होता है हमारे को निंदा भी सहन करनी पड़ती है। महिमा स्वीकार करेंगे तो निंदा स्वीकार हो जाती। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को अपनी अवस्था को सदैव एक रस रखो जैसे ब्रह्मा बाबा। बाबा की जीवन देखी, बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता था कोई निंदा करे या कोई महिमा करे, कोई मान करे या कोई अपमान करे, बाबा ने कभी भी स्वीकार नहीं किया। सामने वाले की अगर जब हम कोई वस्तु स्वीकार नहीं करते हैं तो वो किसके पास रहती है? उसके पास ही रह जाती। कैसी भी परिस्थिति आई, किन्होंने कितनी भी निंदा किया, परंतु बाबा हमेशा अपनी ईश्वरीय मस्ती में मस्त रहे। एक बारी जब साकार बाबा थे तो कलकत्ते में एक पेपर वाले ने बहुत निंदा डाली, हमेशा निंदा डालता था, हमेशा निंदा डाली। तो कलकत्ते के अपने भाई बहनों को ऐसा हुआ, ये हमेशा निंदा ही डालता रहता है, कभी प्रशंसा डाल के ही नहीं देखी इसने, ब्रह्मा कुमारियों की कभी महिमा ही नहीं किया। तो सब वहां के भाइयों ने बहनों ने विचार करके उसके ऊपर केस करने का फाइनल किया कि इसके ऊपर केस किया जावे कि झूठी झूठी निंदा क्यों करता। तो बाबा से पूछने बगैर तो कुछ नहीं करते थे। बाबा को लेटर लिख के पूछा, बाबा ये फलाना फलाना ये हमेशा निंदा करता है तो इसके ऊपर क्यों नहीं केस किया जा? तो बाबा ने उनको जवाब दिया, आज तक आपने ऐसा कहां दुनिया में देखा है कि बाप अपने बच्चे के ऊपर केस करता है? बच्चा बाप के ऊपर करता है पर बाप कभी बच्चे के ऊपर केस नहीं करता। तो मेरे तो बच्चे है ना, आप उसको लेटर लिख के भेजो, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो बने। वो निंदा कर रहा है और उसको लेटर ये लिखने को बोला कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो बने, आप हमारे बड़े से बड़े मित्र हो जो हमारी कमियों की तरफ हमारा ध्यान खींचवा। उस भाई को लेटर गया, वो दिन और आज दिन उसने निंदा लिखना बंद कर दी। तो देखो बाबा की कैसी युक्तियां हैं कि अगर कोई निंदा करता है तुम उसमें हलचल में क्यों आते हो? वो हमारा सच्चा मित्र है। कभी कभी हमें अपनी गलतियां मालूम नहीं पड़ती है पर सामने वाले को अगर मालूम पड़ता है और अगर वो कुछ बोलता है तो वो सच्चा मित्र है, उसको तो थैंक्स देना चाहिए ना कि उसके ऊपर नाराज होना चाहिए। तो बाबा के जीवन में ये प्रैक्टिकल में धारणा होने के कारण बाबा ने हम बच्चों को बोल के नहीं सिखाया परंतु हर कर्म करके सिखाया। इसीलिए भक्ति मार्ग में परमात्मा का गायन करण करावन हार स्वामी किया जाता, वो करता भी है और करवाता भी है, परंतु पहले वो कर्म करके बताता है। कर्म करके बताने के बाद कर्म को फॉलो करना बड़ा इजी हो जाता। तो निराकार ने साकार के द्वारा हर कर्म करके बताया कि श्रेष्ठ स्थिति किसको कहा जाती है, एक रस अवस्था किसको कहा जाती है, सदा की प्रसन्नता किसको कहा जाती है। कोई भी इच्छा नहीं रखो, अगर इच्छा रखेंगे इच्छा कभी भी किसी को अच्छा नहीं बनने देती, आपकी जीवन कभी अच्छी नहीं बन सकेगी। इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या, जैसे देवताओं को इच्छा किसको कहा जाता है इसका ज्ञान नहीं है, वैसे तुम ब्राह्मणों के जीवन में भी जो भी इच्छाएं हैं इस दुनिया की, उसमें से कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, चाहे मान की, चाहे शान की, चाहे नाम की, कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। कोई अगर समझता है कि मैंने देखो इतनी सेवा किया और मेरा नाम नहीं होता है, वास्तव में वो नाम नहीं है, वो अभिमान। अभिमान आता है इसीलिए समझते मेरा नाम क्यों नहीं होता है, और जहाँ अभिमान है वहाँ प्रसन्नता कहाँ से आएगी, वहाँ खुशी कहाँ से आएगी, वहाँ तो क्या होगा, असंतुष्टता आएगी। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को ये बताया कि बच्चे श्रेष्ठ कर्म करते चलो, प्रसन्नता का आधार है श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म करने के बाद उसका रिएक्शन हमारे चेहरे के ऊपर आता है प्रसन्नता, हम भी संतुष्ट होते हैं, दूसरे भी संतुष्ट होते हैं। जितना जितना हम आत्माएं संतुष्ट रहती है, उस संतुष्टता का चारों ओर वातावरण फैलता है और असंतुष्ट आत्माएं भी संतुष्ट होती जाती। परंतु वो कभी हो सकता है जब हम अपनी आवश्यकताओं को कम करते हैं, क्योंकि हमने देखा साकार बाबा की जीवन सादी जीवन, उच्च विचार, एकदम सिंपल जीवन। तो सिंपल जीवन होने के कारण पुरुषार्थ भी सिंपल, ऐसा सिंपल जो कोई भी फॉलो कर सके। तो इसीलिए अपनी आवश्यकताओं को कम करके हम अगर सदैव तपस्या में रहते हैं, सदैव बाबा के लोभ में लीन रहते हैं, तो वो ईश्वरीय नशा जो है वो हमारे चेहरे के ऊपर प्रसन्नता को लाता है, खुशी को लाता है। बाबा कहता है बच्चे प्राण जाए पर तुम्हारी खुशी नहीं जावे, क्योंकि खुशी ये बाबा ने दिया हुआ तुम्हें खजाना है, खुशी ये बाबा ने दिया हुआ तुम्हें वर्षा है, वो तुम्हारा कभी भी जाना नहीं चाहिए। तो इन बातों का हमें खास ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखते हैं फरिश्ता स्थिति। फरिश्ता क्या है? क्योंकि हमें बनना है मनुष्य से देवता, परंतु मनुष्य से देवता बनने के पहले एक बीच वाली स्टेज है। जब तक हम फरिश्ता नहीं बने हैं तब तक देवता नहीं बन सकते हैं। पर पहले तो हमें क्या बनना पड़ेगा? ब्राह्मण बनना पड़ेगा। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो बाबा ने आकर के हम बच्चों को सबको क्या किया? क्षुद्र से ब्राह्मण बनाया, मर्जीवा बनाया। तो फरिश्ते की बात तो हम पीछे करें, पहले हम ये देखें कि हमें ब्राह्मण पने का कितना नशा है, मर्जीवा जन्म हमें कितना याद रहता है। अगर मर्जीवा जन्म मुझे याद है, अलौकिक जन्म मुझे याद है, तो हमारे कर्म आप ही अलौकिक होते जाते। लोकवासियों जैसे नहीं परंतु अलौकिक। बाबा ने हम बच्चों के अंदर वो अलौकिकता अर्थात दिव्यता भरी। हमारा जो जन्म है, हमारा जन्म ही पवित्रता के बल से हुआ है, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुई है। तो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुई है मन पवित्रता से पैदा हुई है। तो जब हमारा जन्म ही अलौकिक है तो हमारे कर्म भी क्या हो गए? अलौकिक होने चाहिए। तो क्या ये सचमुच प्रवृत्ति में रहते हुए, कार्य व्यवहार में रहते हुए, अज्ञानियों के साथ रहते हुए, क्या ये याद रहता है कि मैं ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हूं? या कार्य व्यवहार में आते हुए, लौकिक के साथ व्यवहार करते हुए ये भूल जाता है कि मैं ब्राह्मण हूं? जिसको सदैव याद रहता है मैं ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हूं, वो जरा हाथ ऊपर करो। अच्छा, कठिन तो नहीं लगता है? माताओं का हाथ कम था? माताएं सुन रही हैं? सब उठ गई है ना, नींद पूरी हो गई। अरे मजे की है, माताएं बैठे बैठे सो जाती है। देखो अभी भी कोई कोई अच्छा आराम से नींद कर रही है, क्योंकि ज्ञान तो बड़ा मीठा है ना अपना, तो ये ज्ञान की लोरी, बाबा बोलता मैं तुमको ज्ञान की लोरी देता हूँ, तो माताएं आराम करती है फिर ज्ञान की लोरी ले। तो जब हमको सदैव ये याद रहता है कि मेरा ये अलौकिक जीवन है, तो हमारा सोचना, हमारा बोलना, हमारा कर्म करना, ये कोई भी लौकिक रीति से नहीं होना चाहिए। हमारे हर कर्म में अलौकिकता होनी चाहिए। ब्रिजेंद्रा दादी थी, वो ये पाठ सबको पक्का कराते, कभी भी आपस में परिचय देते नहीं, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है। तो ब्रिजेंद्रा दादी कहती थी, देखो तुम्हारा ये भाई है ना, कौन सा भाई है, ये तुम्हारा लौकिक भाई है, तो बीच में लौकिक अक्षर डालो कि ये मेरा लौकिक भाई है, मेरी लौकिक बहन है। अगर तुमने लौकिक अक्षर डाला ना, तो तुम अलौकिक हो गए, वो लौकिक हो गए। तो जैसा बीच में एक अपने को सेव करने की दीवार आ जाती, याद आ जाता है, अरे मेरा तो अलौकिक जन्म है, ये तो लौकिक। तो जिस समय ये नशा रहता है कि हम ईश्वरीय संतान, हम बाबा के बच्चे हैं, हम ईश्वरीय संतान है, भगवान मेरा बाप है, उसने आके मुझे जन्म दिया है, उसने आके मुझे अपना बनाया है, ये ईश्वरीय नशा ही हमारे अंदर क्या करता है, श्रेष्ठ कर्म कराता। सोचेंगे तो भी ख्याल में आएगा, मैं तो ईश्वरीय संतान हूँ, मैं ऐसा नहीं सोच सकता, मुझे फॉलो फादर करना है, मुझे बाबा को फॉलो करना है, बाबा ने जो सोचा वो मुझे सोचना है, बाबा को जो अच्छा लगता है वो मुझे करना है, क्योंकि बाबा मेरे को अति प्रिय है। जो व्यक्ति प्रिय होती है उसको जो प्रिय होता है वो किया जाता है, अगर उसको जो प्रिय हमने नहीं किया तो वो हमारे से प्यार नहीं करेंगे। तो बाबा को क्या प्रिय है, बाबा को दिव्यता प्रिय है, बाबा को अलौकिकता प्रिय है, बाबा को श्रेष्ठता प्रिय है, क्योंकि बाबा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। तो जिस समय हमें ये हमेशा याद रहता है कि हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण है, तो हमारी वाणी के ऊपर भी कंट्रोल रहता कि ब्राह्मणों की वाणी कैसी होनी चाहिए। बाबा रोज हम बच्चों को क्या बताता है, बाबा यही कहता है, बच्चे कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो। वाणी के ऊपर कंट्रोल कर दिया ना बाबा ने, बाबा हमारे सोच के ऊपर कंट्रोल करता है, हमारे देखने के ऊपर कंट्रोल करता है। देखना है तो किसको देखो, आत्माओं को देखो। तो जितनी जितनी हम ये प्रैक्टिस करते जाते हैं, और उसके साथ साथ विधेयपन की प्रैक्टिस करते, देह से न्यारा बनने की प्रैक्टिस, देखो शुरू से लेकर के ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को ये पाठ पक्के कराए, देह मुक्त होने का पाठ। राजा जनक का इतना गायन क्यों है, वो देह में रहते भी विधेयी रहा, विधेयी अर्थात आत्माभिमानी, देह से न्यारा रहा, इसीलिए आज तक उस राजा जनक का गायन किया जाता। तो बाबा ने बच्चों को ये प्रैक्टिस कराई शुरू से लेके, मैं आत्मा हूँ ये तो पक्का कराया, देह अभिमान से तो दूर कराया, पर देह भान से भी दूर करा। दो बातें हैं, एक है देह अभिमान और दूसरा है देह का भान। देह अभिमान तो मैं फलाना हूँ, ये हूँ, वो, अपनी डिग्री, अपनी पोस्ट, अपनी पोजीशन, अपना कुछ जो होगा वो, रिश्ता नाता। परंतु देह भान माना, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये देह भान। तो ये जो देह भान है, देह भान ही देह अभिमान में लाता है। तो बाबा ने ये भी बच्चों को प्रैक्टिस कराई कि देह अभिमान से तो परे रहना है, पर देह भान से भी परे रहना है। इसीलिए बाबा ने शुरू में ये पक्का करो, मैं शिव की शक्ति हूँ, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, मैं पुरुष हूं ये जो बुद्धि में बैठ गया, पुरुष है तो रोब आएगा, पुरुष समझेगी अपने को, तो अपने को अगर फीमेल समझेंगे तो डर आएगा। इसीलिए बाबा ने ये पक्का कराया मैं शिव की शक्ति हूं, सब आत्माएं मेरी सजनी है, सब आत्माएं शिव की शक्तियां हैं। तो ये जो अभिमान है, मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, विष्णु चतुर्भुज में दोनों भी आ गए, स्त्री भी आ गए पुरुष भी आ गए। तो ये देह अभिमान से देह भान से जितना जितना हम परे होते जाते हैं उतना उतना आत्मा का भान हमारे को पक्का होता जाता है, और जितना जितना आत्मा का भान पक्का होता है, आत्मिक स्थिति हमारी पक्की होती है, हमारी दृष्टि में परिवर्तन आता जाता है। देखो आप जब भी पहले दिन बाबा के पास आए और आपको जब भी ये समझ मिले कि आप देह नहीं परंतु आप आत्मा हैं, इस समझ के बाद क्या हो गया, आपकी दृष्टि परिवर्तित हुई, आपकी स्मृति परिवर्तित हुई, जिस घर से आप आए थे वापस उस घर में गए तो आपका देखने का नजरिया बदली हो गया। कहते जब नजरिया बदली हो गया नजारे आप ही बदली हो जाते, वो आत्मिक दृष्टि, रूहानी दृष्टि, सुखकारी दृष्टि, गुणग्राही दृष्टि आत्मा के भान से क्या होती है, पक्की होती जाती। तो बाबा ने ये बच्चों को पक्का कराया कि पहले अशरीरी बनने का तुम अभ्यास जब करते हैं, देह से अलग होने का अभ्यास जो है, देह से अलग होने का अभ्यास ही क्या करता है, तुम्हारे को सब पुरानी बातों को भुला देता है। फरिश्ता किसको कहा जाता है, फरिश्ता उसको कहा जाता है जिसका देह के पुराने संबंध, देह के नाते रिश्ते, वस्तु पदार्थ देह की दुनिया, जिसका किसी के साथ भी रिश्ता नहीं है वो है फरिश्ता। तो हरेक को ये चेक करना है कि हमारा रिश्ता किसके साथ है। गायन क्या करते सभी, मेरा तो एक गीत गाओ, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा नहीं कोई, ऐसा ही गाते हो ना, या ऐसा गाते हो मेरा तो शिव बाबा और भी कोई कोई। देखो ये किसी को अच्छा नहीं लगता है सुनने को, समझते नहीं, मेरा तो एक शिव बाबा है दूसरा नहीं कोई। जब मेरा तो एक शिव बाबा है, ये जिस समय हम बोलते हैं मुख से उस समय हमको हम चेक करते हैं अपने को कि मेरा तो सचमुच एक ही शिव बाबा है दूसरा कोई नहीं। देखो ये एक ही संगम युग ऐसा है जिस संगम युग पर सारे कल्प में एक ही बारी बाबा इस सृष्टि पर आता है, बाबा आके हमारे साथ सारे रिश्ते जोड़ता है, हम उसके साथ सारे रिश्ते जोड़ते हैं, बाबा हरेक रिश्ते की क्या करता है, हमारे को भाषणा देता है। बाबा ने कहा ना देखो तुमको जो चाहिए वो बनाओ, इसके पहले मुरली चली थी अव्यक्त मुरली, उसमें था ना चाहिए तो तुम माँ बनाओ, तुम बाप समझो उसको, अपना सखा बना लो, अपना बंधु बना लो, जो चाहिए वो आपको, आपकी जिसके साथ अटैचमेंट है ना वो रिश्ता बाबा के साथ जोड़ो, आपकी अटैचमेंट टूट जाएगी। आपको जो रिश्ता खींचता है ना, आपकी बुद्धि को खींच रहा है रिश्ता, वो उसके साथ जोड़ो, साजन का रिश्ता लगाओ, सजनी का रिश्ता लगाओ, वो सब कुछ बनने के लिए तैयार है, वो शिव बाबा के बदले शिव बालक भी बन जाता, सब बनता है वो। हमारे को हर रिश्ते की भाषणा, हर रिश्ते की रचना इस समय पर देता है, हर संबंध की ही रचना दे करके, भाषणा दे के हमको नष्टो मोहा बनाता है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जब तक नष्टो मोहा नहीं है तब तक स्मृति स्वरूप बन नहीं सकती, बाबा की याद ठहर नहीं सकती है। इसीलिए जहां हमारी बुद्धि जाती है, वस्तु में पदार्थ में जहां भी बुद्धि जाती है, उन सभी से बुद्धि का योग निकाल के हमें किससे लगाना है, एक ही बाबा के साथ लगाना है, क्योंकि बाबा ही मेरा संसार, और वो संसार ऐसा पावरफुल है, वो सर्व कुछ प्राप्तियां कराने वाला संसार। बाबा के दरबार में कोई अप्राप्ति है? कहते हैं ना, भगवान के पास क्या अप्राप्ति है, उसके भंडारे भरपूर हैं, आपको जो चाहिए वो लियो। देंदा दे लेंदा थक पाए, देने वाला देता है पर लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं। गलती किसकी है? लेने वाले की गलती है, देने वाले की तो गलती नहीं। तो हम कितनी झोली भरते हैं उससे, ये हमारे ऊपर। तो जिस समय हमारे को ये नशा रहता है, ईश्वरीय प्राप्ति का नशा, ईश्वर के द्वारा जो कुछ मिला है उसका नशा, इन सब बातों का नशा जो है वो हमारे को पुरानी दुनिया से अलग करता जाता। अभी बाबा तो हमको एकदम टॉप पर चढ़ाता है कि तुम्हें विक्रम विनाश करके क्या बनना है, सतो प्रधान बनना है। उसके लिए अपनी स्थिति को क्या बनाओ, बीज रूप की स्थिति बनाओ, आत्मिक स्थिति में स्थित रहो। अभी परंतु हमको कर्म में भी जरूर आना। तो कर्म योगी बनने के लिए बाबा ने हम बच्चों को बड़ी अच्छी युक्ति बताई है कि बच्चे तुम्हें क्या करने का है, तुम्हें डबल लाइट बन करके चलना। कर्म करने के लिए देह तो चाहिए ना, परंतु ये स्थूल देह के बजाय तुम ये ध्यान में रखो कि मैं आत्मा भी लाइट हूँ और मैं लाइट स्वरूप आत्मा इस लाइट के कार्ब में पड़ी। तो जितना जितना तुम ये बुद्धि में रखेंगे कि मैं डबल लाइट हूँ, लाइट का दो अर्थ होता है ना, एक तो लाइट का अर्थ होता है प्रकाश और एक लाइट का अर्थ होता है हल्का। हल्की चीज कहाँ रहती है? हल्की चीज नीचे नहीं रहती, ऊपर उड़ती। बाबा हमारे को क्यों कहता है देह के भान में नहीं आओ? क्योंकि ये जो देह है, देह किसकी बनी हुई है? पांच तत्वों का पुतला है, मिट्टी की बनी हुई है ना। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो इसको ये मिट्टी किसमें मिल जाती है? मिट्टी मिट्टी में मिल जाती। तो आप देखो, मिट्टी जो है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी में कौन सा आकर्षण है? आप कोई भी चीज ऊपर फेंको, पृथ्वी क्या करती है? उसको नीचे खींचती है। गुरुत्वाकर्षण है उसमें, वो अपनी तरफ आकर्षित करती। तो ये जो देह है ना, ये मिट्टी का पुतला है। आत्मा ऊपर उड़ती है तो वो क्या करती है? उसको नीचे लाती, बुद्धि को नीचे लाएगी अगर देह का भान होगा तो। ये मिट्टी खींचेगी अपनी तरफ, इसीलिए बाबा कहते हैं इस मिट्टी के भान को पहले छोड़ो, देह के भान को पहले छोड़ो, देह के अभिमान को पहले छोड़ो। तो मिट्टी से न्यारे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी? एक सेकंड में तुम अपने घर चले जाएंगे, तुम्हारे वतन की तरफ चले जाए। तो इसीलिए अपने को हल्का करने के लिए और शरीरी बना करके हमें क्या करने का है? अपने को लाइट बना के मुझे एकदम हल्का रहना है। मैं आत्मा भी लाइट हूँ, मेरा ये शरीर भी लाइट। शुरू शुरू में बाबा हम बच्चों को हमेशा कहते थे, साकार बाबा कहते थे, बच्चे तुम्हें अव्यक्त वतन में आना है, तुम्हें अव्यक्त वतन वासी बनना है, तुम्हें फरिश्ता बनना है। हम कहते थे अच्छा ठीक है बनना है, पर ऐसा लगता था कैसा कि अव्यक्त वतन में कैसे जाएंगे हम? हमारे सामने तो बाबा बैठा हुआ था, हम क्यों जाएंगे अव्यक्त वतन में? हम तो सामने ही याद करते थे बाबा को, अव्यक्त वतन में जाने की बात ही नहीं होती, डिफिकल्ट लगता था। पर जैसे देखो पंछी होते, पंछी क्या करते हैं? अपने बच्चों को जब उड़ना सिखाते, आपने देखा होगा उसको चोच मार मार के उड़ना सिखाते, उसके छोटे छोटे पंख होते हैं, वो थोड़ा फड़फड़ करता है फिर गिरता है, फिर गिरता है फिर उड़ाता है उसको, फिर धीरे धीरे क्या होता है वो आखिर खुद उड़ करके ऊपर टहनी के ऊपर जाके बैठ जाती है वो चिड़िया, तो पंछी भी उड़ के वहां जाके पहुंच जाते। तो बाबा ने भी यही किया हमारे को, तुम फरिश्ता है, तुम फरिश्ता है, फरिश्ता है, डबल लाइट है, कर करके आखिर खुद फरिश्ता बन के वतन में बैठ गया। तो क्या हो गया, जब बाबा ही हमारा वतन में है तो हमारी बुद्धि कहाँ जाएगी? जहाँ बाप होगा वहां जाएगी। तो बाबा ने बच्चों को सहज किया कि बच्चे तुम बाबा के पास वतन में आके बैठ जाओ, अपनी बुद्धि को बाबा के साथ लगाओ और वतन में आके बैठ जाओ। कर्म करते हुए तुम ये ध्यान में रखो कि हम डबल लाइट, कर्म भी करो परंतु इस देह के अभिमान में नहीं आओ, देह के भान में नहीं आओ, इससे न्यारा होकर के कर्म करो तो तुम्हारे कर्म क्या हो जाएंगे, कर्म भी बहुत इजी हो जाएगा। भारीपन जो होता है वो क्या करता है, थकाता है, परंतु हल्कापन जो है वो क्या करता है, उड़ाता है। तो बाबा ने हम बच्चों को उड़ना सिखाया, फरिश्ता बनना सिखाया कि कर्म करते हुए इस अभ्यास की आवश्यकता है। और जितना हमारे को ये अभ्यास होता जाता है कि मैं इस देह से भिन्न, मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ, मैं लाइट के कार्ब में पड़ी हुई आत्मा हूँ, जितना जितना ये स्थिति हमारी आती जाती है उतनी उतनी हमारी स्थिति उपराम बनती जाती, उपराम माना इस दुनिया से परे होती जाती, एक ही निराकार राम याद रहता है। तो न्यारा बनाने के लिए बाबा ने हम बच्चों को क्या किया, ये फरिश्तेपन का पाठ पक्का कराया कि सदैव ये याद रखो फरिश्ता। फरिश्ता किसको कहा जाता है, हमेशा फरिश्ते का क्या बताते हैं आप, अगर हिस्ट्रियां भी पढ़ेगी ना फरिश्ते की, कहते हैं फलाना फरिश्ता आया, उसने संदेश दिया और वो चला गया। कहां भी आपको ऐसा किसी शास्त्रों में किसी किताबों में नहीं मिलेगा कि फरिश्ता आया और आने के बाद वो वहीं बैठ गया, वो गया नहीं, नहीं। फरिश्ता माना ही उड़ने वाला है, फरिश्ता माना जो जिसको लगाव नहीं है वो है फरिश्ता, उसका किसी के साथ भी लगाव नहीं है, वो आता है ईश्वरीय संदेश देता है और चला जाता है। तो उसी प्रकार हमको ये देखना है कि हम फरिश्ता बनकर के लगाव मुक्त बनकर के सबको बाबा का संदेश देने का काम कर रहे हैं। तो जितना जितना हम लगाव मुक्त बनेंगे, लगाव मुक्त बनने के बाद ही क्या होगे, हम अनेक आत्माओं तक बाबा का संदेश पहुंचा सकेंगे। अगर कहां भी लगाव होगा, लगाव होने के बाद झुकाव जरूर होता है। अब देखो हम चल रहे हैं, चलते चलते हमारा कपड़ा अगर किसी में अटक जाता है, लग जाता है, तो क्या होता है, आप आगे बढ़ेंगे नीचे गिरेंगे, क्योंकि अटक गए ना। तो उसी प्रकार अगर हमारी बुद्धि कहां भी अटकी हुई होगी तो हम जितना जितना आगे बढ़ेंगे ना उतना उतना वो हमारे को क्या करेगा, पीछे खींचेगा, और पीछे खींचने के कारण हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेंगे। परंतु जबकि हमको बाप समान बनना है, बाबा जैसा फरिश्ता बनना है, प्रैक्टिकल में साकार बाबा को देखा, फरिश्ता क्या होता, बाबा में इतना हल्कापन था आपको क्या बतावे, ऐसा जैसा कपूस के माप ऐसा उड़ता, चलेगा भी ऐसा, अभी अभी इधर होगा, अभी देखो किधर, अभी देखो किधर, सारा किधर किधर घूमता हूं, एकदम न्यारा। और किसी बातों, दुनिया की कोई बातों में इंटरेस्ट नहीं। आप दो दिन पहले भी बाबा की मुरली पढ़ी होगी, सुनी होगी, बाबा ने कहा देखो बच्चे ये बाबा पेपर पढ़ता है, हाँ दुनिया का समाचार मालूम पड़े इसलिए पढ़ता है, सुना होगा ना वो, लास्ट लास्ट में बाबा कुछ भी नहीं सुनता, पहले बाबा सुनता था, बाबा देखता था क्या है क्या नहीं, उसके बाद देखा जैसा जैसा बाबा की स्थिति अव्यक्त बनती गई, उस अव्यक्त स्थिति के नजदीक पहुंचता गया, वैसा वैसा इन सब बातों से बाबा न्यारा होता गया, आवाज से एकदम परे। बाबा की यहां तक डबल लाइट की स्टेज हो गई थी, बाबा के कमरे में जाएंगे किसी की ताकत नहीं होती थी आवाज से बोलने, जाएंगे बोलने के लिए बाबा को कोई बात बताने के लिए जाए, पहले हम जाते थे सारा समाचार सुनाते थे, बाबा हमने ये सेवा किया, ये किया, ये किया, बाबा बड़ा रुचि से सुनते थे। फिर उसके बाद जैसा जैसा बाबा आवाज से परे जाने लगा, एकदम अव्यक्त स्टेज के नजदीक जाने लगा, ऐसा लगता था जैसा बाबा हमारे से बहुत दूर चला गए, ऐसा अनुभव होता। और जाकर के बैठेंगे, जो जाके बैठेगा वो भी लाइट हो जाएगा, वो भी बैठा रहेगा। बाबा फिर पूछता था आखिर बच्चे कुछ बोलना है, मुख से नाम भी नहीं बोलते थे, सिर हिला के उठ जाते। तो अव्यक्त स्टेज ये ऐसी है जो सामने वाले को भी व्यक्त से अव्यक्त कर डाल। तो बाबा ने या मम्मा ने ये जो स्टेज प्राप्त किया, ये बिगर मेहनत नहीं हुई। बाबा ने उसके लिए बहुत मेहनत किया अपने ऊपर, शुरू से लेकर के बाबा ने विधेयी बनने की बहुत मेहनत। मम्मा ने सारी सारी रात टेरेस के ऊपर बैठ के तपस्याएं किया, मेहनत कर करके उस स्टेज को प्राप्त किया। तो फील होता था बाबा से कि बाबा अभी इस देह में होते हुए भी देह में नहीं है। कोई बात भी सुनाएगी ना तो ऐसा लगता था जैसा हम तो सुना रहे, बाबा सुन ही नहीं रहा है। देखता भी होगा ना, जैसा ऐसा लगेगा जैसा बाबा हमारे को नहीं देख रहा, पता नहीं कहां देख रहा। उसको जैसा अपना लक्ष्य पक्का दिखाई पड़ता। तो बाबा कहता है बच्चे, अभी तुम बच्चों को देखने के बाद ये तो सब तरफ फेमस हो गया कि ये ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं, परंतु अभी तुम बच्चों को देखने के बाद लोगों को ये पक्का होना चाहिए कि ये तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारी। तुम्हारी योग की ऐसी स्थिति हो जो तुमको कहना नहीं पड़े हम योग लगा, हम योग लगाने वाले योगी नहीं है, हमारी योगी जीवन है। योग लगाना और योगी जीवन में रात दिन का फर्क है। योग लगाना मना योग टूटता है, लगता है योग टूटता है, उसको योग लगाना बोलते हैं। वो तो जो नए आते हो योग लगाते हैं योग टूटता है उनका, पर जो पुराने हो गए उनका भी योग टूटता रहे तो योगी जीवन कभी होगा? जीवन जो होती है वो 4-8 घंटे की नहीं होती है, जीवन ये सदा काल की होती। तो हमारी योगी जीवन है, तो योगी जीवन है तो सामने वाले को ये अनुभव होना चाहिए कि ये तपस्या करने वाले, ये तपस्वी कुमार तपस्वी कुमारी है। तभी हम क्या कर सकेंगे, बाबा को प्रत्यक्ष कर सकें। जब तक तपस्या के वाइब्रेशन नहीं देंगे हम, बाबा की याद के वाइब्रेशन शांति के, आज जैसा बाबा ने शांति की शक्ति का बताया, शांति की शक्ति कितनी पावरफुल है। तो वो जो शांति की शक्ति है उसके वाइब्रेशन जब चारों तरफ नहीं फैलाएंगे तब तक ये अशांत जो दुनिया ये शांत नहीं हो सकती। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक को इंडिविजुअल रीति से भी खुद के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। जिन जिन बातों से हमारी अवस्था ऊपर नीचे होती है उससे अपने को सेफ रख के अपनी अवस्था को एक रस रखने की आवश्यकता। नहीं तो क्या होता है, थोड़ी सी बात होती है डिस्टर्ब हो गए, थोड़ी सी बात हो अरे घड़ी घड़ी डिस्टर्ब हो गए, तो फिर आखिर एक रस स्थिति का हम कभी अनुभव करेंगे? आज देखो ट्यूबलाइट जलाते हैं, फटफट फटफट करती है, लगातार नहीं जलती है तो अच्छी लगती है किसी को? बोलेगे ना भाई बंद करो, ये तो इससे इससे अंधेरे में बैठेगे, ये क्या लाइट? तो उसी प्रकार अगर अवस्था कभी ऐसा, बाबा उसको छुई मुई कहते थे, साकार बाबा उसको छुई मुई की अवस्था कहते। छुई मुई मालूम होगा ना आपको, लज्जावंती का झाड़ होता है, आप उसको हाथ लगाएंगे ना पत्ते ऐसे हो जाते हैं, हाथ दूर करेंगे तो ऐसे खोलेंगे। तो बाबा कहते हैं कोई कोई बच्चों की अवस्था ऐसी है, माया फूक मारेगी तो ऐसे उदास, फिर जरा ये होगा तो एकदम बड़े खुश, अभी देखेगी तो बड़े खुश दिखाई पड़ते हैं, अभी देखेगी तो एकदम ऐसे हो जाएगी बात मत पूछो। तो प्रसन्नता कहाँ चली गई? इतना बरस जो मेहनत करे के हरेक ने, किसको 8 बरस हुआ होगा, किसको 10 हुआ होगा, किसको 5 हुआ होगा, 2 होगा, हरेक ने मेहनत करके अपनी अवस्था को जमाया है ना, वो अवस्था हमारी कायम रहे, वो अवस्था हमारी आगे बढ़े, इस बात का ध्यान देने की आवश्यकता है। और जितना जितना अपने में न्यारापन आता जाएगा ना, इतना इतना क्या होगे, देखने वाले को भी ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति हमारे से अलग है, न्यारा है। न्यारी चीज ही प्यारी लगती है ना, हमारी न्यारी स्थिति जो है वो बाबा को भी प्यारी लगती। परंतु अगर हमारी न्यारी स्थिति नहीं होगी, देह और देह की दुनिया से तो बाबा को भी प्यारी नहीं लगेगी और हमको हमारी जीवन भी प्यारी नहीं लगेगी। ऐसा होता है ना, खुद की जीवन भी अगर समझो कहां बुद्धि अटकी हुई होती है, मेहनत करते हैं, अरे मेरी बुद्धि इससे छूट जावे, मेरी बुद्धि। बाबा ने बड़ा सहज तरीका बताया, सबको भुलाने की कोशिश नहीं करो, एक को याद करो सब भूल जाएंगे तुम्हारे, शरीर से अलग हो जाओ तो आप ही देह का अभिमान क्या हो जाएगा, तुम्हारा टूट जाएगा। तो बाबा ने जो जो युक्तियां बताई है, बाबा जो इतना अथाह ज्ञान का खजाना हम बच्चों को देता है, उस खजाने का हमारे को रमन करना चाहिए, उसके ऊपर हमको विचार सागर मंथन करना चाहिए। जितना जितना हम उस खजाने को उगाड़ते हैं उतना उतना वो हमारा बनता जाता, समय के ऊपर वो। ये ज्ञान सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान शस्त्र है, ये शस्त्र का रूप लेता है। और समय पर क्या होता है, कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है तो उसका मुकाबला करने के लिए हमारे को शक्ति मिलती, हम उसको यूज कर सकते हैं। परंतु अगर हम एक कान से छोड़ के दूसरे कान से निकाल देंगे तो क्या होता है, उससे कुछ भी फायदा नहीं होना। तो इसीलिए ये ध्यान में रखना है कि हमारे को फरिश्ता बनना है, तो जितना हो सके जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलो, जितनी आवश्यकता है उतना ही सुनो, ज्यादा बातों में कभी इंटरेस्ट नहीं रखो, ज्यादा सुनने का भी इंटरेस्ट नहीं रखो, बोलने का भी इंटरेस्ट नहीं रखो, ज्यादा सोचो भी नहीं, कम सोचो, आवश्यकता के अनुसार सोचो। कोई कोई बोलते क्यों नहीं सोचेंगे, क्या हमारी बुद्धि के जड़ है क्या? अरे सोचेंगे तो थोड़ा सोचो, नहीं तो क्या करते, बहुत सोचते हैं और कर्म में लाते हैं बहुत कम, ऐसा नहीं, उसमें वेस्ट बहुत जाता है। तो बाबा कहता है बच्चे तुम अपनी जो एनर्जी है, आत्मिक बल है, जो विल पावर है, उसको सेव करो। इसीलिए बाबा हम बच्चों को ये पाठ पक्के कराता है कि अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर तुम्हारा जितना जापता रहेगा, जितना तुम्हारा कंट्रोल रहेगा, उतना ही तुम क्या होगे, माया जीत जगत जीत बन जाएगे। और ये कर्म इंद्रियों से क्या होते जाएंगे, तुम न्यारे होते जाएंगे। कर्म इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना अर्थात ही फरिश्ता बनना। कर्म इंद्रियां फिर हमें कभी भी धोखा नहीं दे सकेंगी, ऐसा नहीं हमारी बुद्धि चलायमानी हो गई, हमारे को व्यर्थ संकल्प चला गया। बड़ी कर्म इंद्रियां तो मन बुद्धि संस्कार है, कभी संस्कारों का, पुराने संस्कारों का जोर हो गया वो नहीं होगा। इसीलिए थोड़ा अपने ऊपर अगर अटेंशन देकर के पीछे चलते हैं तो हमारी जीवन एक आदर्श योगी जीवन हो जाती है। ओम शांति।